ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में, जिसके अंतर्गत सुनिए डिजिटल अपराध रोकने के लिए सरकार के प्रयास और पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं साइबर विशेषज्ञ अमित दुबे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
डिजिटल अपराध रोकने के लिए सरकार के प्रयास और पहल पर चर्चा के लिए आज हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे से। अमित जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद
अमित जी। साइबर अपराध या डिजिटल अपराध किसे मानते हैं और मोटे तौर पे इसकी क्या परिभाषा के मायने हैं?
देखिए, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर किसी के संग धोखाधड़ी की जाती है, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे अपराधों को हम साइबर क्राइम की श्रेणी में लाते हैं। ऐसे में जो विवेचना होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें भी साइबर एंगल ही इस्तेमाल होता है। जो ट्रेडिशनल मेथड्स है इन्वेस्टिगेशन के, वो काम नहीं आते, क्योंकि क्रिमिनल कहीं भी बैठा हो सकता है, वो किसी भी जगह हो सकता है, इंटरनेशनल लोकेशन पे भी हो सकता है, दूसरे स्टेट में ही होता है अक्सर, और ऐसे में जो पुराने तरीके हैं वो काम नहीं आते। इसमें साइबर एंगल इस्तेमाल होता है, डिजिटल फुटप्रिंट एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, उसकी मोडस ऑपरेंडी को समझा जाता है। ये क्राइम बहुत तेजी से उभर रहा है, हर दिन मोडस ऑपरेंडी बदल रही है, इसलिए काफी सारे चैलेंजेस हैं लॉ एनफोर्समेंट के लिए। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 साल में हमने करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है भारत। सीधे सीधे जो रिपोर्टेड केस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अनरिपोर्टेड केस है वो इससे ज्यादा भी होता है।
जी, आपने साइबर अपराध भी कहा, डिजिटल अपराध, क्या दोनों एक ही हैं या इन दोनों में भी कुछ मोटे तौर पे थोड़ा अंतर है?
देखिए, साइबर अपराध थोड़ा सा ज्यादा बड़ा एंगल है, क्योंकि पहले हम सोचते थे कि जो हैकिंग है या जो रिमोटली किसी का सिस्टम एक्सेस कर लेना, उसके डेटा चुरा लेना, उनको डिजिटल अपराध की श्रेणी में लाया जाता था। पर अभी साइबर में क्या है कि जरूरी नहीं कि आपके संग हैकिंग है, लेकिन आपका भरोसा जीत लिया गया बिकॉज ऑफ साइबर स्पेस। आपको व्हाट्सएप पर किसी ने पैसे मांगे और आपने दे दिए, क्योंकि आपको उसका नंबर वही लगा जो आपके दोस्त का है, उसकी फोटो वही थी। फेसबुक पर किसी ने पैसे मांगे, आपने दे दिए। किसी ने आपको कॉल किया कि मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, आपने उसको ओटीपी बता दिया। किसी ने आपको कॉल किया कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ और आपने उसको भरोसा कर लिया। ये जो है, जो बड़ा दायरा बन गया है, वो साइबर अपराध।
सरकार ने फिलहाल कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे इसको रोकने में या रोकथाम करने में फौरी तौर पर मदद मिलेगी? अभी हाल ही में कल ही गृह मंत्री ने भी इसके बारे में कुछ घोषणाएं की हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें।
देखिए, बिल्कुल, सरकार काफी सचेत है इस मामले में और लगातार प्रयास करती रही है। जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है सरकार का, मैं कहूंगा वो है आईकोसी, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये जो सेंटर है, ये क्योंकि साइबर अपराध की कोई बाउंड्री नहीं होती, साइबर क्रिमिनल कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, और भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो क्राइम के मामले हैं, वो स्टेट अफेयर होते हैं, वो किसी स्टेट पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, सेंट्रल एजेंसी उसमें नहीं इन्वॉल्व होती। अब क्रिमिनल अक्सर दूसरे स्टेट में ही है, इस स्टेट में विक्टिम है, वो इन्वेस्टिगेशन इतनी फास्ट हो नहीं सकती। जब तक आप क्रिमिनल तक पहुंचते हो, क्रिमिनल भाग जाता है, उसके फुटप्रिंट बदल जाते हैं। तो ऐसे में एक नेशनल बॉडी की जरूरत महसूस हुई, जो भारत सरकार ने बनाई, जो कि मैं बोल रहा हूँ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसके काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आईकोसी की। और इसमें ये न सिर्फ जितने भी भारत में कहीं से भी कोई अपराध रिपोर्ट होता है तो उसका डेटाबेस मैनेज करते हैं, वो तुरंत डिस्पैच करते हैं उस अपराध को, जो कि उस व्यक्ति के आसपास वाला थाना, और फिर स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो डेटा चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, या किसी भी दूसरी बॉडी से कम्युनिकेट करना है, इंटरमीडियरी से कम्युनिकेट करना है, वो आसानी से हो सके, तो सारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आईकोसी की होगी। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इनिशिएटिव, इनका एक पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, जिस पर आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी अपना क्राइम रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें एक और फीचर है कि आप एनोनिमस क्राइम रजिस्टर भी कर सकते हैं, मतलब अपनी पहचान छुपाकर, स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए फैसिलिटी दी गई है कि उनको यदि ऐसा लगता है कि उनकी पहचान बताने से उनको कोई खतरा है, तो अपनी पहचान छुपाकर भी क्रिमिनल के बारे में बता दें और उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा पोर्टल है और इसमें लगातार हमें पता पड़ता रहता है कि भारत में कहां क्राइम हो रहा है, कहां ज्यादा हो रहा है, किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, और उसके हिसाब से पॉलिसीज बनना शुरू होती है। इसके अलावा इन्होंने एक और हेल्पलाइन नंबर जो है इनका 1930 है, कि कोई भी यदि कहीं भी फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होता है तो 24 घंटे ये हेल्पलाइन है, गृह मंत्रालय की है, हाईकोर्ट की ही इसको मैनेज करता है, जिसको आप कॉल करके तुरंत अपने फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी देंगे तो वो जो दूसरे अकाउंट में पैसा गया है उसको वो ब्लॉक कर देंगे, फ्रीज कर देंगे और क्रिमिनल उस पैसे को नहीं निकाल पाए। ये आपको जल्दी से जल्दी करना होता है ऑफकोर्स, लेकिन ये बहुत पावरफुल हेल्पलाइन है, उसकी पावर है कि वो किसी भी अकाउंट को पूरे भारत में 48 घंटे के लिए फ्रीज कर सकता है।
जैसे साइबर अपराध के जो भी विक्टिम्स हैं, अगर उनको अपने केस के बारे में प्रगति जाननी हो तो क्या इसी पोर्टल पे उसकी भी सुविधा उपलब्ध है?
जी हाँ बिल्कुल, इस पर न सिर्फ आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसका नंबर मिल जाता है, मोबाइल नंबर, उस पर क्या कार्रवाई हुई है और ये आपको बीच में कोई है तो उसमें कोई जैसे आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो आप अपडेट कर सकते हैं कि अभी उस क्रिमिनल ने ये किया, नई कोर्स डाल दी या उसके कुछ और राइट टीम तो सारी चीजें आप बता सकते हैं और वो एक रियल टाइम मैनर में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पहुंचा सकते हैं।
अभी मोटे तौर पे ये जो साइबर अपराधी हैं इनको पकड़ने का तकरीबन जो सफलता की दर है वो आमतौर पे कितनी है? क्योंकि शायद साइबर अपराध होने के बाद जो विक्टिम्स हैं वो भी शायद उतने सचेत नहीं हैं कि उनकी रिपोर्टिंग करते हैं।
देखिए सबसे बड़ा फायदा जो क्रिमिनल्स को मिलता है वो इस बात का मिलता है कि रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं, हमें जब केस आता है तब तक काफी टाइम हो चुका होता है और क्रिमिनल समय का फायदा उठाकर या तो पैसा विड्रॉ कर लेता है या कहीं दूसरे के ट्रांसफर कर देता है या किसी दूसरे देश में ट्रांसफर हो जाता है पूरा पैसा, तो ऐसे में पैसे की रिकवरी एक बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा जो क्रिमिनल होता है वो कभी भी कोई अपनी आइडेंटिटी यूज ही नहीं करता, जैसे कि किसी भी साइबर क्राइम को करने के लिए जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है बैंक अकाउंट और सिम कार्ड। जब भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता पड़ता है कि जो बैंक अकाउंट है वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर बैंक अकाउंट, जो सिम कार्ड है वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर दिया गया है जिसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर सिम कार्ड दिया गया। तो जो ईज ऑफ एक्सेस दिया गया डिजिटलाइजेशन के चलते मेरे ख्याल से वो एक फायदा पहुंचा देता है क्रिमिनल को।
जी अभी हाल ही में गृह मंत्री ने क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम का एक यूनिक डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें और ये किस तरह से मदद करेगा साइबर अपराध को रोकने के लिए और साथ ही साथ जो विक्टिम्स हैं उनको बचाने के लिए?
देखिए सबसे पहले तो साइबर अपराध में जो बहुत बड़ी चीज मिलती होती है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन। एक ही अपराध एक जगह से बैठकर व्यक्ति अलग अलग स्टेट में परफॉर्म कर रहा होता है तो जो रिपोर्टिंग है वो अलग अलग स्टेट में और वो अलग अलग नंबर भी यूज कर रहा होता है, तो हमें उसको मैप करना रियल टाइम में कि ये एक ही व्यक्ति है, उसकी रियल लोकेशन ये है, विक्टिम 25 जगह पर है, उसमें डिले होता है। मेरे ख्याल से ये चीज जो सीसीएमएस है उसके थ्रू थोड़ा फास्ट हो जाएगी, पुलिस को पता पड़ जाएगा कि एक साथ ये क्रिमिनल उस जगह पर ऑपरेट कर रहा है और उसके ये डिजिटल फुटप्रिंट है, ये मोबाइल नंबर है, ये अकाउंट है, इस तरह से पैसा मूव किया जा रहा है, ये चीजें बड़ी जल्दी उस तक पहुंचने में मदद करेगी, इस वजह से ये बहुत इफेक्टिव चीज है।
एक मोबाइल ऐप भी संकलन के नाम से भी गृह मंत्री ने लॉन्च किया है जिससे भी कंपोडियम कहा गया है कि क्रिमिनल लॉस बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये क्या चीज है और ये किस तरह से इस तरह के अपराधों को रोकथाम में मदद करेगा?
ये जो जितने भी हमारी रिपोर्टिंग होती है आईपीसी के अंदर हो या अलग अलग अपराधों की हो, उस पोर्टल को डिजिटल तरीके से उसमें इस्तेमाल कर एआई का इस्तेमाल कर एनालिसिस करना और उसकी फाइंडिंग्स को कंसर्न आयोग के साथ शेयर करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जो क्योंकि क्राइम बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं मैनुअली उसको करना पॉसिबल नहीं होता। आपको एक जानकारी की के 2-7 हजार से ज्यादा केसेस एक दिन में रजिस्टर होते हैं हाईकोर्ट के, तो एक महीने में करीब 2-2.5 लाख केसेस आ जाते हैं, एक साल में 24-25 लाख केसेस होते हैं। अब इस केसेस में आपको कोई भी पैटर्न निकालना मैनुअली तो वो संभव ही नहीं, ऐसे में ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इट विल एनालाइज दिस डेटा वो बहुत सारा जो भी, और दूसरा जो डेटा इंटरमीडिएट के थ्रू भी आता है बहुत सारी रिपोर्टिंग आती है कि फ्रॉडलेंट साइट बन गई है, बहुत सारे अकाउंट बन गए हैं जो फ्रॉडलेंट है, उस सबको कलेक्ट कर आप फाइंडिंग निकाल सकते हैं कि ये एक्शन पॉइंट्स हैं पुलिस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए टू टेक डाउन दीज थिंग्स, टू ब्लॉक दीज नंबर, ये नए मोडस ऑपरेंडीज आ गए हैं, टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस।
मोटे तौर पे किस किस तरह से साइबर अपराध होते हैं, डिजिटल अपराध होते हैं और क्या तरीके होते हैं कि जिनसे एक आम जो उपभोक्ता है वो उससे बच सके?
देखिए कोई भी अपराध किसी इंसान की कोई कमजोरी को एक्सप्लॉइट करता है। ट्रेडिशनली हम जानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 कमजोरियां किसी भी इंसान की, आपको लालच दिया जाता है आपको या डराया जाता है, कमजोरी का फायदा उठाया जाता है, ये आपको भ्रमित कर दिया जाता है, आपको थाना से ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप गुस्सा हो जाएंगे और कुछ एक्शन ले लेंगे, ये आपका ईगो एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो यही साइबर स्पेस में भी होता है। साइबर स्पेस में करना इसलिए आसान है क्योंकि क्रिमिनल को आपके बारे में बहुत कुछ पता होता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, डेटा भी आपका बहुत जगह चोरी होकर पड़ा होता है, उस डेटा के थ्रू आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, तो बड़ी आसानी से आपका भरोसा बनाकर कोई भी आपकी कमजोरी का इस्तेमाल कर आप उसके पैसे ऐड, तो ये वजह से ये मोडस ऑपरेंडी बदलती भी रहती है तेजी से। जैसे मैं आपसे कहूँ तो सबसे पहले तो जो त्योहार के टाइम पे ई कॉमर्स पोर्टल खड़े हो जाते हैं, हजार डेढ़ हजार में ई कॉमर्स पोर्टल जो आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, अब विक्टिम्स को पता नहीं कि ये ऑथेंटिक है नहीं है, उसमें पैसे डाल देते हैं, प्रो प्रोडक्ट नहीं आता है, वो पुलिस के पास जाते हैं, ये बहुत कॉमन तरीका है जो हमेशा से होता रहा, दूसरा डरा के कि आपको एक मैसेज आएगा कि आज आपकी बिजली कट जाएगी रात के 9 बजे तक यदि आपने क्लिक करके कॉल ली, या आपका चालान हो जाएगा, आपका गाड़ी जब्त हो जाएगी, कुछ भी डरा के पासपोर्ट ऑफिस से मैसेज आ जाएगा, इम्पर्सोनेटेड मैसेजेस आते हैं और लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तीसरा जो तरीका है कि आपको कुछ चीज लियोर करना कि भाई आपकी नौकरी लग गई है या आपकी डिलीवरी पड़ा हुआ इंश्योरेंस कंपनी का और आपने अभी तक क्लेम ही नहीं किया, तो जहां पर आप ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद कुछ चीजें फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो वो बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन कॉल कर लीजिए, फीस शेयर कर दीजिए, ओटीपी शेयर कर दीजिए या अपना कोई डिटेल दे दीजिए। ये सारी चीजें शुरू होती है भरोसे के, तो भरोसा बनता है साइबर स्पेस में क्योंकि क्रिमिनल को आपके बारे में कुछ पता है। यदि कोई आपके बारे में आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स के नाम, आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बताए तो आप शायद की बात है थोड़ा सा ट्रस्ट उससे जल्दी कर लेंगे और शायद उसकी जानना पर। यही मेजर मेरे ख्याल से कॉमन तरीका है साइबर क्रिमिनल्स का, जो अलग अलग रूप में सामने आता है और उसके तरीके बदल जाएंगे पर जो कोर्ट है।
जी, अभी हाल ही में इस तरह की भी चीजें सुनने में आई थी कि किसी ने फोन किया और उनको ये बताया गया कि आपने कोई पार्सल भेजा है जो जिसमें कुछ जो है कस्टम्स में पेश होना पड़ेगा, इस तरह की जी इस तरह के अपराधों की अगर बचना हो तो क्या करना चाहिए या फौरी तौर पे कहाँ पे हमको सचेत रहना चाहिए?
साइबर क्राइम से बचने का जो मेजर तरीका है वो अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं लोगों को। अभी डिजिटल अरेस्ट की केसेस आपने सुने
जी,
क्या आपको कॉल आता है कि आपका नंबर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आ गया है और आपको हम सीबीआई को सौंप रहे हैं और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, आप वीडियो स्टेटमेंट के लिए आपको बुला लेता है, आप स्काइप कॉल पर जाते हैं, जब आप देखते हैं तो सामने थाना दिखता है, पुलिस ऑफिसर ड्रेस में दिखता है, हथकड़ियां दिखती है, गन्स वगैरह दिखती है, आईडी कार्ड वगैरह दिखते हैं और आपको भरोसा हो जाता है कि ये तो रियल पुलिस स्टेशन है और वीडियो स्टेटमेंट लिया जा रहा है। जब आप वीडियो स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं आपसे पहले सिंपल सवाल पूछे जाते हैं और फिर इवेंचुअली आपको ट्रैप कर लिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि लोग 2-2, 3-3 दिन घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसे ही केस में एक वाइस प्रेसिडेंट ने 3.7 करोड़ रुपए तक दे दिए, और भी आपने केसेस सुने होंगे जिसमें 15 लाख 20 लाख रुपए तक लोगों ने दे दिए, बिकॉज वो भरोसा कर गए कि हाँ ये सामने वाला पुलिस ही है और मेरा ना मेरी मुझे इस केस से हटवाना है तो मुझे पैसा देना पड़े। तो कई बार तो वो फेक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बनाकर आपका नाम उसी में आते ही सर्च कराते हैं और आपका अरेस्ट वारंट निकलवा देते हैं, ये देखिए धोनी आपको मिल गया। तो अब इतना इंसिडेंट जब क्रिएट हो जाएगा तो कोई भी उसमें ट्रैप हो जाता है। तो ये कारण है, जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो आपका एक फेक पार्सल की कहानी सुनाकर या आपका बच्चा फंस गया है हॉस्पिटलाइज हो गया है, कुछ भी चीज से डरा कर आपसे कुछ गलती करा देना, ये उनका मकसद है।
जिस तरह की अभी आपने बातें बताई सर, तकरीबन आमतौर पर ये इंडिविजुअल बेसिस पे है साइबर क्राइम से, क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशनल साइबर क्राइम भी होते हैं जिसमें कंपनियों को ही टारगेट किया जाता है?
बिल्कुल होते हैं। देखिए अभी आपने केस सुना होगा हांगकांग के अंदर $26 मिलियन की कंपनी डीपफेक के थ्रू, तो उसमें एक अकाउंटेंट को मैसेज आया कि आपके CFO और CTO वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आपको एक वेब मीटिंग में बुला रहे हैं। उसने वेब मीटिंग ज्वाइन कर ली और उसके बाद उस वेब मीटिंग में बाकी तीनों ने डिस्कशन करके कंक्लूड किया कि आप $6 मिलियन इस कंपनी को पे कर दीजिए, और एक ईमेल आई उसके बाद उसमें अकाउंट था, अकाउंटेंट ने उसका पेमेंट इनिशिएट कर दिया और इस तरह की 3 कॉल हुई एक वीक में, इवेंचुअली $26 मिलियन इस कंपनी के चले गए। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, जब कंपनी को पता पड़ा कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो पता पड़ा कि जो वेब मीटिंग कॉल हुई थी उसमें जो बाकी 3 व्यक्ति थे वो डीप फेक जनरेटेड थे, वो रियल लोग थे, उसके पीछे कोई और था, उनके फेसेस लुक किए गए थे और आवाज लुक की गई थी और अकाउंटेंट को भरोसा दिलाया गया। तो कॉर्पोरेट केसेस की लिमिट भी हद तक बढ़ गई। पहले सिर्फ रैंसमवेयर अटैक होता था जिसमें आपका डेटा इंटरप्ट कर दिया और आपसे पैसे मांगे, बनाने की डिक्रेस करना है तो आप पैसे दीजिए बिटकॉइन, उसके बाद हैकिंग तो होती ही है, टेक डाउन हो जाता है, डीडॉस अटैक भी होते हैं जिसमें आपका सर्वर 4-5 घंटे के डिली डाउन कर दिया पर ही रिक्वेस्ट भेज के। तो बहुत सारे इसको हम बोलते हैं CIA पैटर्न फॉर ए कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी कर, जितने ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल है जो हमारे स्थानीय चाहना स्पॉन्सर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडी, वहां से ऐसे केस की जरूर ऑरिजिनेट होते हैं भारतीय ऑर्गेनाइजेशन की, या तो कॉन्फिडेंशियलिटी चैलेंज की जाती है कि उनका डेटा चला गया, या इंटीग्रिटी चैलेंज की जाती है कि उनके डेटा बेस में फेरबदल कर दी जाए ताकि उनका ट्रस्ट खत्म हो जाए डेटा से, और तीसरा होता है कि अवेलेबिलिटी चैलेंज कर दी जाए कि वो डाउन ही कर दिया जाए ताकि उसके कंज्यूमर उस सर्विस को यूज करें। तो ये तीनों तरीके से अटैक होते हैं जो कॉर्पोरेट करते हैं।
अमित दुबे जी, हमारे से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे डिजिटल अपराध रोकने के लिए सरकार के प्रयास और पहल पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे साइबर विशेषज्ञ अमित दुबे, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है।